सबक नंबर 63, आयत नंबर 105 से 122, सूरत निसा। लेसन नंबर 63, आयत नंबर 105-122। तफसीर देखेंगे, लेकिन इन आयत की तफसीर से पहले एक वाक्य आपके सामने रखूंगी। बहुत ही अहम रुकू है, बहुत सारी बातें ख़ानदानी ज़िंदगी के मुतल्लिक हम इस रुकू में देखेंगे। अल्लाह ताला ने एक बहुत ही हसास मौजू को इन आयात में हमारे सामने रखा, और जिससे ये पता चलता है कि इस्लाम सिर्फ हमें इबादत का ही तरीका नहीं सिखाता, बल्कि हमारी मोहब्बतों और हमारी हमदर्दियों को किस बुनियाद पे हम रखें, ये सब कुछ इसमें सीखते हैं। एक वाक्या है बहुत ही मारूफ, जो ख़ास तौर पे आयत नंबर 104 से लेके 113, लेकिन अगर देखा जाए तो जहाँ तक हमारा आज का ये सबक है 122, इन सब की बुनियाद एक ही वाक्य जो है वो है, अपने लफ्ज़ों में आपके सामने रख दूँगी, और हदीस की कई किताबों से ये हमारे तक पहुँचता है, तिर्मिज़ी में, हाकिम में और कुछ और किताबों में। एक शख्स था जिसका नाम था तोमा, तोए आइन मीम, जैसे ताम होता है ना इसी तरह तोमा भी बोलते हैं बाज़ लोग, इसको थोड़े से मुख्तलिफ लफ्ज़ों से भी बोलते हैं। अब ये शख्स मुसलमान था लेकिन दर हकीकत मुनाफिक था। कहते हैं कि ये शख्स मदीना में रहते हुए भी सहाबा कराम की तौहीन करता, आप ऐसे अशार लिख लिख के दूसरों के नामों से शाया करता कि जो सहाबा के ख़िलाफ़ होते थे, और इसने एक ऐसी बात की कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए ये आयात हम सब के सामने रख दी, कि जिसको देखकर हम वाकई महसूस कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो दिलों के भेद तक जानती है। इस शख्स ने एक चोरी की, कहीं से किसी की एक ज़रह थी उसको चोरी किया, और ये उस वक्त का बात है कि जब आटा जो था वो बहुत ज़्यादा महंगा था, नायाब था, लोग आम तौर पे खजूर खाते थे और गेहूं का आटा नहीं मिलता था। मुल्क शाम से आटा आता था जिसको लोग इस नियत से ख़रीद लेते थे कि अपने मेहमानों को खिलाएंगे किसी ख़ास तौर पे। तो एक सहाबी थे हज़रत रुफाया, राफा अलिफ आइन था, उन्होंने कुछ आटा ख़रीदा और एक बोरी में रख के अपने घर में रख लिया। इसमें कुछ असलहा वगैरह भी था और इसको घर के अंदर एक छोटी कोठरी में महफूज कर दिया। अब ये जो शख्स था, तीन नाम आते हैं, तोमा, इब्ने उबैरक और बशीर, इनमें से कोई एक भी था, लेकिन उसने इस चीज़ को जान लिया कि इनके पास आटा भी है और इस तरह उसमें कुछ हथियार है। घर में नकब लगाया, बोरी निकाली, आटा चोरी कर लिया और धोखे के साथ इल्ज़ाम लगा दिया एक यहूदी के ऊपर कि यहूदी ने आटा चोरी किया होगा। लेकिन इत्तफाक़ देखिए कि आटे की जो बोरी थी ना, उसके अंदर सुराख था। इसने क्या किया कि आटे की बोरी ला के अपने घर से फिर यहूदी के घर लाने में यानी जो कोशिश की, उसकी वजह से ज़मीन के ऊपर उसके निशान पड़ गए। किस्सा मुख्तसर, वाक़या तो बहुत तवील है, लेकिन हम इस वक्त चूँकि इसको अपनी नसीहत के लिए ले रहे हैं कि इस शख्स ने आटा चोरी किया और इल्ज़ाम एक यहूदी पर लगाना चाहा। यहूदी सच्चा था, जब उस पर इल्ज़ाम लगा तो उसने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसाफ तलब किया। वही वाक़या जो पीछे भी सूरत निसा में एक हम पढ़ चुके कि हज़रत ज़ुबैर का एक यहूदी से वाक़या था, और ऐसे वाक़यात लोगों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होते हैं कि एक तरफ यहूदी और एक तरफ मुसलमान है। अब यहूदी ज़ाहिर इल्ज़ाम वाला लग रहा है, लेकिन गुनाहगार जो था वो मुसलमान था। इस बात का डर हो सकता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस यहूदी को मुलजिम बना दें और उसके ऊपर यानी जो मुजरिम उसको साबित कर दें और इस शख्स को छोड़ दें। तो इस पे अल्लाह ताला ने ये पूरा वाक्या हमारे सामने रखा और इसमें बहुत सारी नसीहत की बातें भी रखी और ये बता दिया कि इंसाफ जो है वो बिल्कुल किसी इंसान के मज़हब और दीन से ऊपर उठ के रखने वाली चीज़ है। और यहाँ ये भी जहन में रखिएगा कि मदीना में मुसलमान जब आए तो फ़ौजी तौर पर तो मुसलमानों को भी बर्तरी हासिल नहीं थी, अभी इस्लाम के अंदर वो ताकत नहीं थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन एक बर्तरी इस्लाम को हर दौर में रही और वो थी इखलाकी बर्तरी। दुश्मनों को भी ये पता था कि ये अदल और इंसाफ वाला दीन है, इसीलिए जब भी कोई शख्स हक पे होता तो वो काब बिन अशरफ के पास मामला लेके जाने के बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आता, क्योंकि उसको ये यकीन था कि मेरा यहूदी होना या काफिर होना मुझे मुल्ज़िम नहीं बनाएगा, ये लोग अदल और इंसाफ की बात करेंगे। इसलिए ऐसे मौके पे वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुआशरे में थोड़ा नीचा करना चाहते थे, उनकी ये ख्वाहिश थी कि हम कोई ऐसा मामला अल्लाह के नबी से करवा दें कि जिसकी वजह से इस्लाम की ये जो धाक बनी हुई ना, कि ये बहुत अदल वाले हैं, यहाँ जुल्म नहीं होता, यहाँ किसी की हक तलफी नहीं होती, ये रेपुटेशन लूज़ हो जाए। और जब एक दफ़ा ये हो जाए तो हम कह सकेंगे कि देखो ये कैसा दीन है कि ये अपने मज़हब और अपने दीन की बुनियाद पे लोगों को आगे करते हैं और दूसरों को नहीं करते। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयात नाजिल करके इस्लाम की अखलाकी बुलंदी को साबित किया। पूरी बात को अगर दोहरा दूँ कि जंगी तौर पर, असलहे के तौर पर तो मुसलमान अभी मज़बूत नहीं थे, लेकिन मुसलमान अपने असूलों, अपने जाब्तों, अपनी आदात और अपनी इन सारी चीज़ों में बहुत वेल नोन थे, बहुत मारूफ और मशहूर थे कि ये कभी जुल्म नहीं करते, ये किसी पे ज्यादती नहीं करते, मज़हब का, रंग, नस्ल का कोई झगड़ा इनके अंदर नहीं आता। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी साजिश की कि अल्लाह के नबी से कोई ऐसा गलत फ़ैसला हो जाए जिसकी बुनियाद पर आप एक दफ़ा मुलजिम को आज़ाद कर दें और जो बेचारा बेगुनाह है उसको पकड़ के सज़ा दिलवा दें, ताकि फिर हम ये शोर मचा सकें कि ये कैसा दीन है और इसमें तो जुल्म नहीं होता, इसमें ऐसी बात नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने इस्मत अम्बिया, इस्मत कहते हैं पाक रखना, नबियों से ख़ता होने से भी अल्लाह ताला ने बचा लिया। और ये सारी आयात जो अब हम पढ़ने वाले हैं इनको देखा, और आयात चूँकि एक वाक़े से मुतालिक हैं तो इंशाअल्लाह ताला साथ ही साथ आयतों के वाक़े को हम मज़ीद अच्छी तरह समझते रहेंगे। तो चलिए ज़रा आयत को साथ लेके चलते। आयत 105, इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बिल हक, बेशक हमने आपकी तरफ किताब हक के साथ नाजिल की। इन्ना का लफ्ज़ क्यों आया? अल्लाह के लिए आया। और इन्ना अनज़लना बज़ाहर जमा का सीगा लगता है, लेकिन ये ताज़ीम का है। पीछे पे बात इस पे कई दफ़ा हो चुकी कि अल्लाह ताला ने अपने लिए हम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया? ये शर्फ़ के लिए, इज़्ज़त के लिए। जैसे दुनिया में भी बाज़ बादशाह अपने आप को हम के सीगे से मुखातिब करते हैं, और अरबी ज़ुबान में इसको शर्फ़ या इज़्ज़त का कहते हैं, ना कि जमा का। दूसरी बात पता चली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान पाक यह अहकामात नाजिल हो रहे थे वो सरासर अल्लाह की तरफ से थे और हक के साथ थे, सच के साथ थे। क्यों नाजिल हुआ ये इल्म, ये क्यों आपको ये किताब दी गई? लितहकुमा बैनन नासी, ताकि आप लोगों के दरमियान फैसले कीजिए, बीमा अराक अल्लाहु, इस बात की रोशनी में जो अल्लाह ताला ने आपको दिखा दी। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला अपने नबी पर मुख्तलिफ वक्तों में अहकामात और आयात क्यों नाजिल करते हैं? ताकि किसी के ऊपर जुल्म ना हो, किसी के ऊपर ज्यादती ना हो, और अल्लाह ताला अपने नबी को वो सारी सूरत हाल दिखा देते हैं। यहाँ लफ्ज़ बीमा अराक अल्लाह जो ये काबिले गौर है, ये भी तो हो सकता था ना कि अल्लाह ताला ताकि आप फैसले करें उसके साथ जो बीमा अनजल अल्लाहु इलैक, जो अल्लाह ने आपकी तरफ नाजिल किया। लेकिन यहाँ दिखाने की बात ये साबित करती है कि अल्लाह ताला जो हैं वो नबियों को कुछ बातें इस तरह खोल के दिखा देते हैं कि जो बात दूसरों को बिल्कुल भी महसूस नहीं होती, आपके ज़ाती इल्म, आपके गुमान में वो बात आ ही नहीं सकती थी, जिसको अल्लाह ताला इस तरह खोल के दिखाते थे जैसे रोज़े रोशन की तरह एक चीज़ वाज़े हो जाए। इससे भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कुरान पाक जो 23 साल में नाजिल हुआ उसकी हिकमत क्या थी, कि जब कोई हालात पेश आए, कोई सिचुएशन क्रिएट हो, उसी के मुताबिक अल्लाह ताला नबी को रहनुमाई दें। वरना आप देखिए कि अगर ये वाक़िया जिसको अब इस वक्त हम पढ़ने लगे हैं, ये वाक़िया तो आपके दौर में पेश हुआ और कुरान पाक उससे पहले कहीं नाजिल हो चुका होता, तो क्या ये रहनुमाई हासिल हो सकती थी? और इससे ये बात भी पता चलती है कि जो अमली मराहल के दौरान तरबियत की जाती है ना, वो ज़्यादा मुअसर होती है। जैसे हालात बनते जाते थे वैसी ही आयतें आने लगती थीं। फिर उसके बाद बिलहक के लफ्ज़ से ये पता चलता है कि ये सच है, इसमें कोई बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तरफ से नहीं है और कोई गुमान नहीं है और इसमें कोई झूठ नहीं है। फिर अगली बात क्या, वला तकुल लिल खाइनीना हसीमा, और मत खयानत करने वालों के लिए आप झगड़ा करने वाले बन जाएं। यहाँ कौन है खाइनीन? उस शख्स के कबीले वाले, नामों में मत उलझिए। जिस शख्स ने चोरी की, जब उसने चोरी की मामला बदल गया, अब इस शख्स को पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा। ये अपने कबीले के पास आया, खानदान या बिरादरी उसको आप कह लें। आप उसके सामने आके रोया धोया और कहा कि देखो, अब तुम्हारी इज्जत का मसला है, हम एक खानदान है, बेइज्जती हो जाएगी, तो तुम मेरी हिमायत करना। अब बावजूद इसके कि इसके कबीले और कुंबे वालों को पता चल गया था कि ये शख्स मुजरिम है, लेकिन सिर्फ बिरादरी या खानदान या जात के नाम पे उन्होंने इस शख्स की हिमायत की और इसको सच्चा साबित करने और यहूदी को झूठा साबित करने की कोशिशें की। इनके इस अमल को अल्लाह ताला ने खयानत कहा और नबी को कहा कि आप इनके लिए हसीमा, हसीमा से मुराद ऐसी जैसे वकीला, क्या आप इनकी वकालत ना करें, क्योंकि आज ये लोग झूठ का साथ दे रहे हैं, गलत बातों को ला रहे हैं और इन्होंने असल में अपने मुसलमान होने को साइड लेने का जरिया बनाना चाहा, तो लिहाजा आप इन लोगों की बातों पे ना आइएगा और आप इनकी हिमायत ना कीजिएगा, बल्कि वस्तग़फिरल्लाह, अल्लाह से बख्शिश तलब करें। किस बात की, किसके लिए बख्शिश की जाए, इस पे तीन मुख्तलिफ वजूहात इमाम राजी ने लिखी कि पहली बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तौमा के लिए मुसलमान होने के नाते से हल्का सा जो ख्याल आ गया कि नहीं ये सच्चा होगा, इस अमल पे आपको मग़फ़रत की बात कही गई। देखिए कि कामिलीन जो होते हैं ना, उनकी छोटी छोटी ख़ताएँ भी बहुत बड़ी बन जाती हैं। यानी अल्लाह के नबी में हल्का सा भी अगर दिल आ गया, मैं आ गया ना कि चूँकि ये मुसलमान है तो ये सच्चा ही होगा, इस पर बख्शिश मांगे। दूसरी इसकी तफसीर की जाती है कि तौमा जो था उसकी कौम जिसका नाम बनू जफ़र था, उनकी शहादत की वजह से जो यहूदी को मुजरिम ख्याल करने का वहम आ गया था उस पर इस्तग़फ़ार करें। यानी एक समझ लें कि यहूदी के नाते से कि उसको ना आप मुलजिम समझें, और अगर आपके दिल में ये ख्याल आ गया तो फिर आप इस पे बख्शिश तलब करें। और इसी तरह एक तीसरी तफसीर जो है वो क्या है कि आप इन लोगों के लिए बख्शिश तलब करें जिन्होंने जानते बूझते एक शख्स के मुजरिम होने के बावजूद सिर्फ अपने ख़ानदान का शख्स होने की वजह से उसकी हिमायत की। और बात जनरल है, वस्तग़फिरल्लाह, और हर बंदे को हर लम्हे अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की और दूसरों के लिए माफ़ी तलब करते ही रहना चाहिए, क्योंकि इन्नल्लाह कान गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। फिर आगे उसी बात को बढ़ाया गया, वला तुजादिल, और मत लड़ा झगड़ा कीजिए, अनिल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ से, मुरादे के साइड ना लिया करें, हिमायत ना किया करें उन लोगों की जो अल्लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, जो ख़यानत करते हैं अपने नफ्सों की। यहाँ देखिए कि लफ्ज़ ख़यानत बार बार आ रहा है, अमानत का ऑपोजिट है। जैसे ईमान है ना, ईमान से अमानत है, पीछे इस पे बात तफसील से हो चुकी कि अमानतें कितनी किस्म की हैं, जिसमें ज़िम्मेदारियाँ और ओहदे और माल और असबाब और सब कुछ होता है। इसी तरह इसका ऑपोजिट जो है ना, ये ख़यानत है। और अल्लाह के नबी सल्लम ने मुनाफिक की निशानियों में जो बहुत बड़ी निशानी बताई थी वो यही थी कि जब इसके पास कोई अमानत रखी जाए तो ये ख़यानत करता है। अब जब कोई शख्स ख़यानत करता है तो क्या वो एक ही किस्म की ख़यानत है? और यहाँ किस ख़यानत का तذکرہ है इसके बारे में थोड़ी सी बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ लफ्ज़ यख्तानून अनफुसहुम आया कि वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों के साथ ख़यानत की। अगर टैक्स को देखें तो ख़यानत उनकी वो यहूदी के साथ थी जो मुलज़िम नहीं था और इन्होंने उसको मुजरिम साबित करना चाह, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये ख़यानत इनकी अपनी ख़यानत है। क्यों? इसकी कुछ वजूहात हैं। पहली बात तो ये कि ख़यानत करने वाले का वबाल खुद अपने ऊपर ही पड़ता है। हम जब किसी के साथ कोई ज़्यादती करते हैं ना, ख़यानत करते हैं, आप यही लफ्ज़ ले लें, बज़ाहर हम उसको नुकसान दे रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है या जो उसका असल नुकसान है ना, वो हमें ही पड़ेगा। ये इंसान अपने जहन में सोच ले तो कभी किसी की बेजा किस्म की हिमायत नहीं करेगा। कुरान पाक में आता है, वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा, कोई बोझ उठाने वाला बोझ नहीं उठाएगा बोझ किसी दूसरे का, सूरह बनी इसराइल की आयत 15 है। इसी तरह सूरह फातिर में भी ये बात आती है। तो एक बात तो इससे ये समझ में आती है कि जब हम किसी की वजह से करते हैं तो उसका नुकसान हमें खुद पड़ता है, लेकिन एक और बहुत ही खूबसूरत लतीफ़ सा नुक्ता, और वो क्या है कि जब कोई बंदा किसी की ख़यानत करता है तो दरअसल खुद अपने नफ्स की ख़यानत करता है, क्योंकि दिल, दिमाग और जिस्म की वो कुव्वतें जो अल्लाह ने उसको अमानतन दी थी उनका गलत इस्तेमाल करता है। आप देखिए कि या हम अपनी आंखों से कोई चीज़ देख लेते हैं फिर गलत बयान करते हैं, कानों से कोई चीज़ सुन लेते हैं और गलत बयान कर देते हैं, असल में हम अपने आज़ा हमारी आँखों कानों का मिसयूज़ करते हैं और मजबूर करते हैं कि वो उस ख़यानत में हमारा साथ दें। हमारी आंखें झूठ नहीं बोलना चाहती, हमारी ज़ुबान झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन हम इससे गलत काम करवा कर इसको मजबूर करते हैं कि झूठ करो, गलत देखो, गलत सुनो, गलत बोलो। अल्लाह ने ज़मीर नाम का जो मुहाफिज़ हमारे जिस्म में रखा है, हमारे अखलाक का, ये बहुत बड़ा मुहाफिज़ है, लेकिन जब वो हमें टोकता भी है ना तो हम उसको भी दबा देते हैं और नतीजा क्या होता है कि ख़यानत करने लगते हैं। तो जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो उसमें खुद गिर जाता है। इन्होंने ख़यानत दूसरे के साथ की थी, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं यख्तानून अनफुसहुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान खवानन असीमा, बेशक अल्लाह ताला नहीं पसंद करता बहुत ज़्यादा ख़यानत में ख़यानत करने वाले और बहुत ज़्यादा गुनाहगार को। पूरा ज़ोर इसमें इसी बात पे आता है कि इस्लाम किसी की हक तलफी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कि कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो। फिर इनकी हालत क्या थी, यस्तख़फून मिनन्नास, ये छुपते हैं लोगों से, लेकिन वला यस्तख़फून मिनल्लाह, नहीं ये छुप सकते अल्लाह से, वकानल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता, और बेशक अल्लाह ताला है उसके साथ जो ये अमल करते घिरने वाला। अब ये तामा को जब पता चला कि मेरा जुर्म खुल गया है और मेरी बात पता चल गई है, तो रिवायात में आता है कि मदीना को छोड़ा और मक्का की तरफ चला गया और वहाँ जाके एक बिल्डिंग के नीचे दब के मर भी गया, लोगों को फेस नहीं कर सका। यहाँ एक बहुत ही बुनियादी चीज़ की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा दिया, और वो क्या है कि जो मुनाफिक होता है ना, वो दुनिया की नाकामी को फेस नहीं कर सकता। इस शख्स से ख़यानत हो गई, इंसान से हो जाती है, सादा सा तरीका क्या था, अल्लाह के नबी के पास आता, माफ़ी मांग लेता, रो लेता, धो लेता, अल्लाह के नबी मुझे माफ़ करें। और आप तो अपने उम्मतियों पर बहुत शफीक और रहीम थे, आपने कभी भी उसको ताना नहीं देना था, आप फौरन उसको माफ़ कर देते, जैसा कि कई और मौक़ों पे ऐसा हुआ। लेकिन इसका मामला क्या था कि ये अना का शिकार था, इगोइस्टिक था, ये सेल्फ कॉन्शियस था, जिसको आप कह सकते हैं कि लोगों से बहुत डरता था, इसको ये खौफ था कि लोग क्या कहेंगे, और मैं अगर लोगों की नज़रों में अब इस तरह मुजरिम बन के चला फिरा तो बहुत ही बुरा लगूंगा। नतीजा क्या हुआ कि ये फेस करने की बजाय, तौबा करके गुनाह को माफ़ कराने के बजाय मक्का से भाग गया, मदीना से निकला, मक्का में भाग गया, और वहाँ जाके ऐसे एक ईमान के दायरे से निकल गया। ये कैफियत हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल तवज्जो है। गुनाह हो जाता है, लेकिन याद रखिए कि अगर लोगों के डर की वजह से हम अपने उस गुनाह को मज़ीद बढ़ाकर और ज़्यादा नुकसान पर चल पड़े तो ये दुरुस्त तरीका नहीं होता। फेस कीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक बड़ा प्यारा अमल कुरान पाक में हम पढ़ेंगे कि जब उनको कहा कि तुमने मारा था एक शख्स को, तुम वही हो जो एक शख्स को मार गए थे, कहा हाँ मारा था, हो गया, तब मैं जाहिल था, नहीं पता था। फिर क्या हुआ, देखिए कि कोई बंदा अपने आप को हरफन मौला ना समझे, गुनाहों से पाक ना समझे, ख़ता भी होती है, गलती भी होती है। सबसे ज़्यादा बड़ी फतह एक इंसान की क्या है कि वो अपनी गलती को खुद रियलाइज़ करे, ये पहला दर्जा होता है। और इसको हम करें ना करें हमें पता चल जाता है कि गलती हमारी थी, लगता है पता कि नहीं। घर में झगड़ा होता है और उस वक्त तू तू मैं हो गई, तलख कलामी हो गई, थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो अंदर से आवाज़ आती है ना कि गलती तुम्हारी भी थी, तुम क्यों बोली, चुप रह जाती, इस वक्त मौका नहीं था बात करने का, क्यों बात छेड़ी, क्यों ताना दी, आती है ना। ये पहला दर्जा होता है। अक्लमंद कौन है, फौरन उठे और जिसके सामने ये गलती जाके उसका हाथ पकड़े के आई रियलाइज इट, मैं अपोलोजाइज करती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि इस्लाम ने यहाँ हमें वो सुन्नत और तरीका सिखाया है जिसको आज हमने तो छोड़ दिया और गैरों ने पकड़ लिया। मैंने ख़ास तौर पे ट्रैवलिंग में, क्योंकि जब लोगों से डील होता है ना, डीलिंग करता है इंसान, और जब प्रैक्टिकल सूरत हाल आती है तो ज़्यादा सीखता है। मैंने जो वेस्टर्न कल्चर की खूबसूरत चीज़ देखी है वो ये देखिए कि जहाँ इन लोगों की गलती हो ये फौरन मान जाते हैं, उसको कंपनसेट करना चाहेंगे, उस पर पैसे इनके लगे, उनके ऊपर क्या मामला हों, यानी ये हज़ारों खर्च कर देंगे लेकिन अपने ऊपर बुरा नाम नहीं लेते। और दूसरी तरफ जहाँ इनकी गलती नहीं होती तो ये सिर्फ हमारी बातों से कभी भी पीछे नहीं पड़ते। पीछे शायद मैंने एक दफ़ा शेयर किया था, एक ऐसा मौका हुआ कि हमारी कोई फ़्लाइट थी एक जगह से दूसरी जगह, और फिर उसके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस भी था जो हमें दूसरी फ़्लाइट लेनी थी, लेकिन जो हमारी मेन फ़्लाइट जहाँ से चल रही थी वो किसी वजह से रनवे पे खड़ा रहा जहाज़, एक घंटा लेट हुई। और हम लोग इस चीज़ के मुकल्लफ थे कि हमारी फ़्लाइट अगले दिन की और हम ख़ुद उस एयरपोर्ट पर रहें, अपना होटल लें ना लें, दिस एंड दैट। लेकिन उस 1 घंटे की इनकी फ़्लाइट का डिले आना, हमारी जो अगली फ़्लाइट थी वो नेक्स्ट डे थी और 24 घंटे थे, वट एवर हम जो मर्ज़ी करते, लेकिन चूँकि एयरलाइन वालों की गलती थी कि जहाज़ अपने स्केड्यूल से 1 घंटा लेट आया, उन्होंने हमें होटल दिया, हमें फूड वाउचर्स दिए, हमें फ्री जाने आने की सब चीज़ें दी, और जितने वो शर्मिंदा थे इस बात के माफ़ करें हमारा जहाज़ लेट हो गया। और सेम वापसी पे भी हमारा यही स्केड्यूल था, हमने ये सोच रखी कि हमें नहीं पता था, मुंह से नहीं उन्होंने कहा लेकिन हमें उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल दिया, वापसी पे हमने सोचा कि अभी भी ऐसा होगा, लेकिन जब हम काउंटर पे गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि आपकी बाय चॉइस बीच का स्टॉप है तो आप जो है हम आपको फ्री होटल प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमने उन्होंने कहा कि नहीं, जब हम आए थे 2-2.5 माह पहले तो तब तो ऐसे ही हुआ था, आपने होटल दिया। 1 सेकंड में उन्होंने कंप्यूटर में डाल के हमें सब बताया, हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, वो तो फिर क्या करें, नहीं बिकॉज लुक एट दिस कि दैट टाइम आवर फ्लाइट वॉज 1 आवर लेट, तब आपको उसके। और हमने सिर्फ हिसाब लगा के देखा था कि हम दो दो थे, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों पे उन्होंने एक रात में शायद $500-600 लगाया था होटल और खाने और सब चीज़ों में। सिर्फ 1 घंटे की डिलेइंग पे उन्होंने हम पे 500 लगा लिया, क्यों, ताकि हम उस चीज़ पे दिल बुरा ना करें। देखिए इंसान से गलती होती है ना, तो आप उसको कंपनसेट करें, और ये आदत अगर आप अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे ना, इससे आपके दीन को बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि दीन में इंसान के थोड़ी सी शिद्दत भी आ जाती है, थोड़ी सी लोगों के साथ तू माया भी होती है, जहाँ फील करें ना कि आपने हाथ ज़रा सख्त खींच लिया, डाल दिया था, फ़ौरन रियलाइज़ करें नहीं मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे लगता है मैंने आप बच्चों बेटा आपके सख्ती कर दी, बच्चों को सिखा रहे हैं, घर वालों को कर रहे हैं, कुछ भी, फौरन गिव अप करें। अल्लाह ताला यहाँ ये सिखा रहा है कि तोयमा जो था इसने माफ़ी मांगना, अपनी गलती को मानना गवारा ना किया बल्कि भागा। वजह क्या थी, यस्तखफून मिनन्नास, लोगों से छुपना चाहता था, और ये है वो शिर्क खफी, लोग क्या कहेंगे। इस जुमले से मुझे जितनी नफरत है, और मैंने देखा है जिन लोगों के पास कोई भी हाथ में उनके दलील नहीं होती ना, किसी को खौफजदा करने की, किसी को कुछ कहने की, वो इस हथियार से ज़रूर आपको मारना चाहते हैं कि देखें सोच लें लोग क्या कहेंगे। कौन होते हैं लोग, आप हैं लोग, कोई लोग नहीं है कि आप, जब आपको कोई कहते हैं ना लोग ये बात कह रहे हैं तो मान लीजिए जो कहने वाला है वो ये बात कह रहा है, क्योंकि अगर वो समझदार होता और अगर लोगों ने बात की थी और वो गलत थी वो कभी उस बात को बाहर ना लाता। तो अपनी ज़िंदगी से लोगों का डर निकाल दें। सूरत मायदा में इंशाल्लाह एक आयत हम पढ़ेंगे, वला तखाफून लौमत लाइम, जिन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है उनकी एक सिफत है कि वो किसी मलामत आले की मलामत से नहीं डरते। क्यों, क्योंकि बंदे मोमिन की अदालत तो अल्लाह के सामने है, वो लोगों की नज़रों में थोड़ी बड़ा होगा। इससे पता चलता है कि जब कोई बंदा काम अच्छा कर रहा होता है ना, तो वो काम असल में फिर लोगों के लिए कर रहा होता है। जो बंदा लोगों के डर से रुक जाएगा ना, उसके लिए ये बात एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है कि फिर जो उसने आज तक किया था ना वो भी लोगों के लिए था। इसलिए यस्तखफून मिनन्नास, बच जाओगे, छुप जाओगे, नो प्रॉब्लम, ये बताओ कि अल्लाह से कैसे छुपोगे, क्योंकि वहुवा माहुम, वो उनके साथ है। कब, इस युबीतूना, जब वो रातों को मशवरे कर रहे थे, किसकी तरफ इशारा है, तोयमा की कौम की तरफ इशारा है, वो निगोसिएशन, वो मीटिंग, वो चुपके चुपके की बातें जो इस झूठे को सच्चा साबित करने के लिए थी, अल्लाह ताला कह रहे हैं वो बातें कर रहे थे, माला योरदा मिनल कौल, जिनसे अल्लाह राजी नहीं होता। यानी नबी के सामने आके तो ये कह देंगे ये हमारा शख्स सच्चा था, झूठा नहीं था, लेकिन तन्हाई में जो इनकी बातें हो रही थी उन बातों पे अल्लाह ताला बिल्कुल भी इनसे खुश नहीं था, क्योंकि वकान अल्लाह बिमा यामलून महीता, है अल्लाह ताला हर उस अमल पे जो ये कर रहे, यानी हर वो काम जो ये करते हैं अल्लाह ताला ने इनको घेरे में लिया हुआ है। खुलासा क्या है कि अल्लाह से बंदा नहीं बच सकता। देखिए अल्लाह का डर बंदे को बाकी चीज़ों से बेनियाज कर देता है। जिसको अल्लाह की समाइत का यकीन आएगा ना, वो कभी भी किसी पे ज्यादती नहीं करेगा, वो अपने अंदर की अदालत में जीता है। और यहाँ जो माइत है ना, ये कौन सी माइत है, साथ कौन सा अल्लाह ताला का, हलूल का कोई बात है, या अल्लाह ताला जिस्म से साथ था, नहीं अल्लाह ताला इल्म के साथ था। कुरान पाक में बहुत जगह आप इस बात को पढ़ेंगे कि अल्लाह की मदद, अल्लाह की माइत दो तरह की होती है, एक है माइत मदद के मानों में, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सबर वालों के साथ है, इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। यहाँ मुराद है कि सबर वालों और तकवा वालों को अल्लाह की मदद मिलती है, लेकिन दूसरी जो माहियत है ना, वो अल्लाह ताला के इल्म, अल्लाह ताला की सिफात की माहियत है साथ में आसमान पे, वहाँ रहते हुए भी हमारे दिल के भेद जान रहा है, हमें देख रहा है हमारे दिलों में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों की नज़रों में कितने अच्छे बन के बैठ जाते हैं, तन्हाई में हम क्या करते हैं अल्लाह को पता है। तो यहाँ साथ से मुराद ये ना सोचिए कि अल्लाह ताला नऊज़ुबिल्लाह उनके साथ शरीक था और वो काम कर रहे थे और देख रहे थे, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको घेरा हुआ था। मुहित हौत से है, हा बौता या हाता का लफ्ज़ उर्दू या पंजाबी ने भी में भी आपने सुना होगा, ये वही लफ्ज़ है कि ये नबी को तो नहीं पता चला कि रातों में इन्होंने क्या प्लानिंग की, लेकिन अल्लाह को पता है। फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहे, हा अंतुम हो तुम, हा उलाई वही लोग, जा दल तुम, तुमने झगड़ा किया, अनहुम इनके बारे में, किनके बारे में, तैमा के बारे में, फिल हयात दुनिया दुनिया के मामले में, यहाँ में असल में खिताब है उसकी बिरादरी से, उसके हम ख्याल लोगों से कि जिन्होंने इस बात को जानते बूझते कि उस शख्स से गलती हुई, वो सही काम नहीं कर रहा था, उसने खयानत की, उसने चोरी की, फिर इल्ज़ाम दूसरे पे लगा दिया, अपने किसी नफसियाती मसले को सबके सामने इस तरह पेश कर दिया कि जैसे वो सच्चा साबित हो जाए, अल्लाह ताला करे जानते बूझते तुमने उनकी हिमायत की। चलो एक सवाल का जवाब दो, फमई युजादिलुल्लाह अनहुम, बस कौन अल्लाह के मामले, अल्लाह के सामने झगड़ेगा इनके बारे में, यौमल क़ियामती क़ियामत के दिन, कोई क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने आके इस शख्स को सच्चा साबित कर सकता है। बनू जफर को डांटा जा रहा है कि देखो क्या तुम तो ऐमा के बारे में कल मैदाने माक्षर में खड़े होके कह सकोगे कि नहीं नहीं अल्लाह ताला ये चोर था या जो भी था, लेकिन इसको छोड़ दें। अम्मन यकूनुल अलैहिम वकीला, और कोई होगा उसका वकील, कोई उसका कारसाज होगा। यहाँ बताया जा रहा है कि बास दफ़ा लोग अपनाइयत के नाम पे, मोहब्बतों के नाम पे दूसरों को डिफेंड करते हैं, साथ देना जिसको बोलते हैं, हम कहते हैं अब मैं नहीं इसका साथ दूंगी तो और कौन देगा। याद रखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी को मोहब्बत हो सकती है ना, तो माँ को अपने बच्चे से होती है, बाप से भी ज़्यादा। लेकिन एक माँ को भी इसका हक नहीं पहुँचता कि वो अपने बच्चे की गलत काम में हिमायत करे। कसूर आपके बच्चे का है आपको मानना चाहिए, 2 साल का बच्चा है या 20 साल का बच्चा है, गलत काम करके आ गया, स्कूल में किसी को डांटा, किसी की कोई चीज़ ले ली, किसी का कोई मामला ख़राब किया, जहाँ कहीं आप किसी ऐसे शख्स की हिमायत करेंगी ना कि जो मुजरिम है, तो समझ लें आप खुद बेइज्जत होंगी। ये भी एक कोड वर्ड ज़िंदगी का बना लें, कभी मैंने गलत काम करने वाले की हिमायत नहीं करनी वरना मैं खुद भी जलील हो जाऊंगी। जैसे अछूत होता है ना, एक से दूसरे को लगता है, तो यहाँ अल्लाह ताला ने यही बात बता दी कि जब उन्होंने उसकी गलत हिमायत की तो कल क़यामत के दिन कौन हिमायत करेगा। हमारा एक सोशल स्टैंडर्ड बन चुका है अपने रिश्तों की बड़ी हिमायत करते हैं। मिसाल है बेटी और दामाद का मामला बिगड़ा, हमारी सारी हमदर्दियाँ बेटी के साथ, बहू और बेटे का मामला बिगड़ा, सारी हमदर्दियाँ हमारी बेटे के साथ, माँ और भाभी का मामला बिगड़ा, हमारी सारी हमदर्दियाँ माँ के साथ, और सो ऑन रिश्तों की जिस हम चेन में प्रोए हुए हैं ना, इसमें याद रखिए हम सब के लिए यहाँ अमल की बात है कि जहाँ कभी दो का मामला बिगड़े हक वाले का साथ देना है। चेक कीजिए, देखिए कितने ही घरेलू झगड़े जो है ना, वो भड़ते ही कब है, गलत हमायत में। हम लोगों की गलत हमायत करना छोड़ दें, झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला यहाँ अदालतों की बात नहीं कर रहे, घरेलू फैसलों में हमें ईमान वाला बनना सिखा रहे हैं। कोई आप कहे, माँ कहेगी तुम बदल गई, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुमने भाभी को सच्चा किया। हाँ, इसलिए अम्मी के भाभी सच्ची थी। भाभी का भाभी होना सिर्फ इस बात की दलील नहीं बन जाता कि आपकी भी सारी बातें उस पर डाल दी जाएं। इंसान अदब और मोहब्बत के साथ रहे, लेकिन इस मामले के अंदर अपने आप को सही पे रखे, क्योंकि आप देखिए जो घरेलू अदालतें होती हैं ना, इसमें जज्बात की आजमाइश होती है। हम मुख्तलिफ महाजों पे आजमाए जा रहे हैं, कहीं हम माल के नाते से आजमाए जा रहे हैं, कहीं हम वक्त के नाते से आजमा रहे हैं, लेकिन जज्बों की जो आजमाइश है ना, जिसने इसमें भी खयानत की वो भी पकड़ जाएगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या बड़ी बात है, हो गया, किसी ने गलत काम कर दिया तो क्या हुआ, कसूर आपका है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें, और कसूर किसी दूसरे का है तो जाओ उससे दरगुजर करो। इसी का तस्कर अगली आयत में आता है, आयत 110 और 11 में, वमई यामल सुअन, और जो कोई बुरा काम करे, औ यस्लिम नफ्सहु, या अपने नफ्स पर जुल्म कर ले, یہاں تک تو بات کامن ہے نا، اور یہ دونوں کام ہوں گے، ہم سے سو بھی ہوگا، ہم سے ظلم بھی ہوگا نفس پہ۔ اس کے بعد دو ہی راستے ہیں، ثم پھر یستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگ لیں۔ کیا ہوگا مانگیں گے تو؟ یجد اللہ غفور الرحیم، آپ اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو تانا نہیں دیتا، ایسا کیوں کیا، کیسے ہوا، تمہیں کیا کہا تھا، تم پھر آگے، نہیں، دل کے اندر شرمندگی رکھتے ہوئے، اپنے گناہوں کا احساس رکھتے ہوئے جب ایک انسان آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ کبھی نا سمجھی سے گناہ ہوتے ہیں، کبھی جذبات کے غلبے سے مغلوب ہو جاتا ہے انسان، بس سچے دل سے شرمندگی اور معافی مانگ لے، اور اگر کسی دوسرے پہ زیادتی ہو گئی ہے تو اس سے بھی معافی مانگ لیں۔ دیکھیے ہمیں معافی مانگنا کیوں مشکل لگتا ہے، یہاں چھوٹی سی بات پھر کروں گی جس سے انشاءاللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے ہاں ایک اور بہت ہی زیادہ ظلم ہے، اور وہ کیا، ہمیشہ کہتے ہیں کہ چھوٹا بڑے سے معافی مانگ لے۔ مثال ہے کہ ایک مرد ہے، اس کی ماں اور اس کی بیوی کا جھگڑا ہو گیا، اب کیا جی بات بڑھ گئی، کتنے لوگ ہیں جو حالات کھولتے ہیں، بھائی کیا حکم ہے، کس کا وقت، نہیں 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 بس تم معافی مانگو، تم میری ماں سے معافی مانگو، تم میری ماں سے معافی مانگو، یہ تو بہت زیادتی ہے۔ یقین کریں اسلام ایسا ظلم برداشت نہیں کرتا۔ اگر عدالتوں میں ظلم نہیں ہو سکتا نا، تو گھروں میں بھی نہیں ہوگا، اور جب تک گھریلو زندگی، معاشرتی زندگی میں عدل اور انصاف نہیں آئے گا نا، عدالتوں میں نہیں آئے گا۔ کچھ چار خاندان کے بڑے لوگ پڑ گئے کسی معاملے کو سلجھانے، تو وہ بات کرنے، وہ بچی بیچاری روتے ہوئے اپنی بات بتاتی ہے کہ میری بات تو سن لیں، اس وقت یہ ہوا تھا، میں کپڑے دھو رہی تھی، ساس نے آگے یہ کہا، وہ ہوا، چپ 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 چپ، بچیاں نہیں بولتی، چلو چلو معافی مانگو۔ یاد رکھیے، آپ جب تک چنگھاری تک بجھائیں گے نہیں، تب تک آپ آگ لگنے کے خطرے سے نہیں بچیں گے۔ یہ جو وقتی طور پہ چپ 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 کرا کے صلح کرا دی جاتی ہے نا، یہ ایسی ہے جیسے آپ نے آگ کی چنگاریوں کے اوپر تھوڑی سی چیزیں ڈال دیں کہ بس اب اس کو نہ چھیڑو، ذرا موقع ملے گا۔ آپ دیکھیں کتنی صلحیں ایسی ہوتی ہیں خاندانوں میں، چار دن اچھے نہیں ہوئے پھر مسئلہ شروع، سنا ہوگا آپ نے، کئی عورتیں بیچاری کئی کئی باہر واپس جاتی ہیں، پھر آتی ہیں، پھر آتی ہیں، کہتے ہیں پھر ٹھیک نہیں ہوئے، پھر خراب ہوئے، کیوں، آپ نے بیماری نہیں دور کی۔ جیسے جیسے مریض بیمار ہے تو ڈاکٹر بیماری نکالنے کے بجائے اوپر بس اس کے پٹیاں باندھتا جائے۔ تو اگر کسی مسئلے کو پوری طرح سالو کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو جڑ سے نکالیں، دل میں کوئی بات ہے اس کو نکالیں، عمل میں کوئی بات ہے اس کو بدلیں، رویوں میں بات ہے اس کی اصلاح کریں، ورنہ یاد رکھیے کل جو بڑا فتنہ آئے گا اس سے آج چھوٹا فتنہ بہتر ہوتا ہے۔ آپ کبھی اپنے بچوں کو بھی فورس نہ کیا کریں، کبھی باپوں اور بیٹیوں کے معاملات میں مت بولیں، اصل مسئلہ دیکھیں پرابلم کس کا ہے۔ کسی بندے کے بہترین اخلاق کی گواہی آپ دے سکتے ہیں اس کی جو سچ بولتا ہے، کب، جب اس کے سامنے چاہے اس کا دشمن ہے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں جو بزرگ ہوتے ہیں خاص طور پہ، ان کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ معروف ہو چکا ہوتا ہے کہ جی یہ زبان کے بڑے کھڑے ہیں، یہ سچ کہتے ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، یعنی وہ کہتے ہیں، ایک شخص ہے وہ اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میرا مسئلہ ہی کیا ہے، میرا ظلم کیا ہے کہ کبھی میں زہر کو میٹھی چینی نہیں کہہ سکا۔ ہم اپنے رویوں کو چیک کریں، اور اس میں پھر کہوں گی معذرت کے ساتھ کہ عورتیں مردوں سے زیادہ ملوث ہوتی ہیں، جس کی بات سنتی ہیں ان کو وہ سچا لگتا ہے، جس کی بات پہلے سن لیتی ہیں ان کو وہ سچا لگتا ہے۔ کئی دفعہ خاندانی جھگڑوں میں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں پہلے میری سن لو، کیوں کہ ورنہ آپ نے دوسرے کی سن لی تو آپ اس کو مان لیں گے۔ اور معروف بات ہے، کبھی آپ کسی سے کوئی بات کریں اور اگلا نائٹ نوٹس لیں، آپ کہتے ہیں دیکھا پہلے جو آپ دوسرے کی سن کے آگے تو میری نہیں سنیں گے۔ جس بندے کے پاس حق ہے نا، وہ اطمینان کی نیند سوئے گا، مطمئن ہوگا، سب کی سنو، سب کی سنو، جو میرے خلاف تمہیں کوئی کہہ رہا سن کے آؤ، پھر آخری دن میرے پاس آنا۔ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے، کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل ہے ہی جانے والی چیز۔ اس کا تعلق صرف فتح مکہ میں، مکہ کے فتح ہونے اور بتوں کے ٹوٹنے سے نہیں ہے، زندگی کے ہر معاملے میں یاد رکھیں کہ اگر میں حق پہ ہوں، ڈالی ڈالی پھر کے بھی کوئی آئے گا نا تو آپ کی سچائی مان جائے گا، خود دوسروں کے آگے نہ مانے اس کا دل مان جائے گا۔ یہ کہنا پہلے سنا دوں، پہلے کر دوں، یہ ہو گیا، میں نے کچھ کہنا تھا، میں نے یہ جھگڑے چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سچ کو آنچ نہیں ہوگی۔